मेरे प्रिय युवा मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं भारत मालदीव संबंधों पर थोड़ी सी बातें करूंगा, लेकिन आइए उससे पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। आज की जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, आज की जब मैं कह रहा हूं तो आज के अखबार की, अदरवाइज अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेंगे, दूरदर्शन और आकाशवाणी की बात करेंगे तो कल की महत्वपूर्ण खबरें हैं, लेकिन चूंकि हम लोग आज बात कर रहे हैं तो इसीलिए मेरे मुंह से आज निकल जाता है। वह ये है कि जो अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है, यानी कि लोअर हाउस जो हमारे यहाँ लोकसभा के समानांतर है, उसके जो स्पीकर हैं वे ताइवान पहुंची। अब ये छोटी सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? देखिए, गाइडेंस की यही जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है या कह लीजिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस की समझ नहीं है, तो आपको एक छोटी सी बात लगेगी कि ठीक है, अमेरिका के जो स्पीकर हैं वो ताइवान पहुंच गई, तो ठीक है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते रहते, ये वहां चली गई। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। महत्वपूर्ण किस मायने में है, इसके लिए अब आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाना होगा। जो ताइवान है बेसिकली, उस पर चीन अभी भी अपना अधिकार जताता है। इनफैक्ट 1949 में आपको मालूम है कि चीन पर कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया था। माओ त्से-तुंग का नाम आपने सुना होगा, अगर चीन का इतिहास आपने पढ़ा है तो आप जान जाएंगे। तो जब वहां कम्युनिस्ट का कब्जा हुआ तो उसके बाद 1949 में ताइवान उससे अलग हो गया, चीन से अलग हो गया, लेकिन पूरी तरह से अलग भी नहीं है। इस मायने में अलग नहीं है कि चीन अभी भी उस पर दावा करता है और चीन वहां की सरकार को बकायदे मान्यता भी देता है और वो कहता है कि नहीं, चीन उसका अपना हिस्सा है। और इसीलिए चीन जो है विदेशी अधिकारियों को ताइवान जाने नहीं देता। उसका यह मानना है कि अगर वे वहां जाएंगे तो एक प्रकार से वो हमारी संप्रभुता का उल्लंघन करेंगे, हमारी अखंडता का उल्लंघन करेंगे, हमारे मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, यानी कि कोई विदेशी वहां नहीं जा सकता। और अभी जो नैन्सी पेलोसी पहुंची हैं, वो अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के स्पीकर हैं। फिर आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, देखा होगा नहीं कहना चाहिए, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि जब वो ताइवान जा रही थी तो किस तरीके से बकायदे जो फाइटर प्लेन हैं उनकी सुरक्षा के घेरे में वो वहां जा रही थी, सुरक्षा के घेरे में। और इस दौर में बकायदे चीन ने भी अपने युद्धपोत और जो भी फाइटर प्लेन है तैयार कर रखे थे, और अमेरिका भी पूरी तरह से तैयार था कि यदि चीन ने इसका विरोध करते हुए कोई युद्ध की धमकी दी या युद्ध छेड़ दिया तो हम तैयार हैं। सोच करके देखिए, तो ये यात्रा कोई सामान्य यात्रा तो नहीं रह गई। अब देखिए क्या हो रहा है कि चीन लगातार ताइवान पर दबाव डाल रहा है और बकायदे धमकी भी देता है कि वो ताइवान को अपने आप में मिला लेगा। अमेरिका इसका विरोध करता है क्योंकि अमेरिका ये मान करके चलता है कि वो लोकतंत्र का समर्थक है और जहां भी लोकतंत्र में संकट पैदा होगा वहां हम उसका साथ देंगे। इसीलिए देखिए कि पेलोसी ने वहां पहुंचने के बाद ये बात कही कि दुनिया में दो ही प्रणालियां हैं, या तो लोकतंत्र है या निरंकुशता है, या आप कह लीजिए कि जिसे आप कहेंगे तानाशाही है, और उसमें से हमें एक को चुनना है, तो हम लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अमेरिका को इसमें क्या पड़ी है। देखिए, अमेरिका की प्रॉब्लम क्या, अमेरिका की जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कह लीजिए या जो इसमें हित कहना ज्यादा सही होगा, वो ये है कि जो ये ताइवान है, ये आप जानते हैं कि कहां स्थित है, ईस्ट एशिया में स्थित है, ईस्ट एशिया में। और बकायदे जो पैसिफिक रीजन है, या कह लीजिए कि जो चीन महासागर जिसे आप कहते हैं, वहां ये स्थित है। छोटा सा ही देश है, लगभग 2.5 करोड़ की आबादी है, 35,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। इसकी जो राजधानी है वो कभी कभी आपने नाम सुना होगा, तैपेई इसकी राजधानी है। बुद्धिज्म वहां काफी है, भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। जब चीन में बुद्धिज्म है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहां भी बुद्धिज्म होगा। बकायदे इनकी अपनी करेंसी है, बकायदे ये अपने तरफ से पासपोर्ट देते हैं, वहां वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन चीन का दबाव भी उस पर लगातार बना रहता है। अब जब आप इधर हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि अमेरिका क्यों इसमें इंटरेस्टेड है। भारत के बारे में अब आप सोचिए, मैंने अभी शब्द का इस्तेमाल किया, हिंद प्रशांत क्षेत्र में ताइवान स्थित है, चीन इस पर अपना दावा करता है, तो क्या भारत के लिए भी यह जो घटना है महत्वपूर्ण हो सकती है? और अगर महत्वपूर्ण है तो फिर आप बताइए कि यह भारत के फेवर में है या भारत के अगेंस्ट है। मुझे लगता है कि अगर आप थोड़े से भी समय से तैयारी कर रहे होंगे, एटलीस्ट 6 महीने से, तो आपको इसका उत्तर देने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा कि नहीं, यह घटना तो भारत के फेवर में है। राइट। तो इसी तरह से आपको घटनाओं को देखना होगा, समझना होगा, तब जाकर के आप सही मायने में सिविल सर्विस की तैयारी कर पाएंगे। इसलिए कभी कभी मैं कहता हूं या मुझे ऐसा लगता है कि मार्गदर्शन काम करता है, और डेली ऑडियो लेक्चर के जरिए मैं यथासंभव जो भी मेरे लिए सब हो सकता है आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, दो खबरें और हैं। एक खबर आपदा प्रबंधन को लेकर के है। आप देखते हैं कि केदारनाथ धाम की जब यात्राएं हो रही होती हैं तो कभी बादल फट जाते हैं, झीलें फट ज़्यादा पानी होने से या झीलों के टूट जाने से बाढ़ आ जाती है और कितने लोग खत्म हो जाते हैं। इस साल भी ऐसा हुआ है। तो एक बहुत अच्छी खबर है कि खासकर जब देखा गया तो लगभग 329 झील ऐसी मिली जिनमें आप यूँ कह लीजिए कि खतरे की का अंदेशा होता है, जिन्हें आप या अगर आप हिंदी भाषा में कहना चाहे तो संवेदनशील झीलें हैं। तो वहां पर अब बकायदे सेंसर लगाए जा रहे हैं और लगभग 3/4 झीलों में सेंसर लगाए जा चुके हैं, 75% झीलों में। सेंसर से क्या होगा? सेंसर से ऐसा होगा कि जैसे ही झील का जल स्तर बढ़ेगा, झील में पानी ज्यादा आएगा या बादल फटेगा या हिमस्खलन होगा, तो बकायदे जो वहां हमारा संस्थान है उस संस्थान में बकायदे सिग्नल्स पहुंच जाएंगे। संस्थान को सिग्नल मिल जाएगा कि यहाँ की जो झील है वो ज़्यादा भर चुकी है, और जैसे ही यह संदेश मिलेगा वैसे ही फिर कोशिश की जाएगी कि झील को पंक्चर किया जाए। पंक्चर किया जाए कहने का मतलब ये शब्द है उन्हीं का कि कैसे अब इसमें से पानी को निकाला जाए। तो पानी के निकालने के जो भी तरीके हो सकते हैं तो जो संस्थान है वो तुरंत फिर उसके पानी को निकालने की कार्यवाही शुरू कर देगा, तो कम से कम बाढ़ जैसी जो खतरनाक स्थिति हो सकती है उससे हम बच सकेंगे। दूसरी जो है वो सीमा सुरक्षा को लेकर के, राष्ट्रीय सुरक्षा आपके टॉपिक में है और अपडेट करने की दृष्टि से मैं ये जो खबर आई है इसकी चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, हमारे यूपी उत्तर प्रदेश को लें तो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर कौन सा स्टेट दूसरा स्टेट राज्य देश है? नेपाल। और असम का बॉर्डर किससे है? बांग्लादेश से। तो अभी ये देखा गया है कि ये जो नेपाल और बांग्लादेश से जो हमारे बॉर्डर मिलता है उस बॉर्डर एरियाज के जो गांव हैं वहाँ की मुस्लिम आबादी बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से बढ़ी है, यानी कि लगभग 10 सालों में ये 32% बढ़ गई मुस्लिम आबादी, जबकि पूरे देश में इसका जो इसकी जो वृद्धि दर है वो 10-15% के आसपास रही है। तो वहां तो 32% की अगर वृद्धि हुई है तो डेफिनेटली मामला कुछ गड़बड़ सा है। तो या तो बाहर से आकर के मुस्लिम वहां रह रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो इसको देखते हुए बकायदे इन दोनों राज्यों की पुलिस ने और जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने केंद्र सरकार से ये अनुरोध किया है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया जाए। यानी कि यह मामला कहीं ना कहीं अलार्मिंग है, चेतावनी दे रहा है। बढ़ा दिया जाए किस अधिकार के तहत? खासकर होता यह है कि बॉर्डर से अंदर की तरफ अपने देश में जब हम आएंगे तो अभी जो दायरा है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो हमारे जवान हैं 50 किलोमीटर के दायरे तक लोगों की जांच कर सकते हैं, कहा जा रहा है कि अब उसे बढ़ा करके 100 किलोमीटर कर दिया जाए, यानी कि 100 किलोमीटर अंदर के दायरे में जो हमारे BSF के जवान हैं वो बकायदे नागरिकों की जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। हालांकि देखिए, जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो राज्य सरकारें अपनी तरफ से विरोध करती हैं, लेकिन चूंकि अब तो राज्य सरकार की पुलिस ने भी ये बात कही है तो सामान्य तौर पर हम ये मान सकते हैं कि नहीं, स्थिति अब वैसी खराब नहीं होगी। और केंद्र सरकार देखिए अब इस पर विचार करने के बाद क्या निर्णय लेती है, लेकिन एक अपडेट है जो आपके पास होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, भारत मालदीव संबंध। पहली बात तो ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं इस पर बकायदे एक इंडिपेंडेंट लेक्चर है, उसमें आपको बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारे संबंध क्या हैं। इस विषय को मैंने क्यों चुना है आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली, वो भारत आए हुए हैं। कल के बकायदे दूरदर्शन न्यूज़ में आपने सुना है कि भारत और मालदीव के बीच सहयोग के कुल 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सीधे सीधे ये बात कही है कि मालदीव में जो खासकर आधारभूत ढांचे के विकास की बात हो, जिसे हम बुनियादी ढांचा कहते हैं, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भारत काफ़ी मदद करेगा, और अभी $10 करोड़ की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है। तो यह एक घटना है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि इन घटनाओं के माध्यम से हम इसे बहुत ही महत्वपूर्ण मान सकते हैं मेंस के लिए, लेकिन फिर भी चूंकि मालदीव अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र है भारत के लिए और खासकर सुरक्षा की दृष्टि से, तो डेफिनेटली इसके बारे में आपको जानना ही चाहिए, चाहे एग्जाम में पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार भारत के सामने चैलेंजेस आते चले जा रहे हैं समुद्री सुरक्षा को लेकर। अक्सर आप देखिए कि जब भी हम किसी इंटरनेशनल फोरम पर होते हैं, वर्ल्ड फोरम पर होते हैं, तो समुद्री सुरक्षा पर जोर देते हैं। क्यों देते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी कितनी लंबी समुद्री तट हैं, रेखाएं हैं, हमारा जो विदेशी व्यापार है कैसे हिंद महासागर से होता हुआ जाता है। तो समुद्री सुरक्षा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और जो मालदीव है आप जानते हैं कि किस तरीके से कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में यह स्थित है और उसके अरब सागर में, हिंद महासागर बड़ा सागर हो गया और उसके अरब सागर में स्थित है। आपको चाहिए कि आप इसे बकायदे लोकेट कर लें। ये दोस्तों इसे किंग आइलैंड कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है और यही इसकी सबसे भू राजनीतिक जो स्थिति है इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। और भारत उन देशों में था कि 1965 में जब ये ब्रिटेन से आज़ाद हुआ तो भारत मान्यता देने वाले देशों में पहले था, मतलब पहले देशों में था, और ये सार्क का संस्थापक देश तो रहा ही है। अब मैंने कहा कि ये समुद्र में स्थित है, तो अब आप उससे अनुमान लगा लीजिए। भारत से मालदीव की दूरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं यहाँ गया हूँ, आबादी भी बहुत कम है, लगभग 4-5 लाख की आबादी है। सोच करके देखिए कि जो इसका क्षेत्रफल है 300 वर्ग किलोमीटर, 300 वर्ग किलोमीटर क्या कि आप मोटे तौर पर समझ लीजिए 20 किलोमीटर लंबा 15 किलोमीटर चौड़ा एक देश है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी है, लोकेशन ऐसी है कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि समुद्री मार्ग से भारत में घुसपैठ की जा सकती है, तस्करी हो सकती है, समुद्री डाकू होते हैं, तो इनके निपटने में मालदीव बहुत सहायक हो सकता है। चीन आप देख रहे हैं कि किस तरह से अपने लगातार प्रभाव को बढ़ाता चला जा रहा है, मोतियों की लड़ी के संदर्भ में, पर्ल्स के संदर्भ में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मालदीव के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे बने रहें। तटीय सुरक्षा की बात मैंने कही ही, और सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से या सैन्य शक्ति की दृष्टि से भी जो मालदीव है हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों ये बस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, और मुझे लगता है कि इतनी जानकारियां ही आपके लिए सफिशियंट होंगी, बहुत ज़्यादा जानने के चक्कर में पढ़ने का कोई विशेष औचित्य मुझे दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से 3 दोस्तों के नाम हैं, अक्षय राठौड़ अहमदाबाद से, महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से, और शिवांगी पांडे रघुपुर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।